روتے بھی ہیں اور رلاتے بھی ہیں. بہن بھائیوں کے درمیان میں یہ جھگڑے بڑے کامن ہوتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں میں ایک بات بڑی پیاری دیکھی ہوئی کہ یہ لڑتے بھی ہیں اور بہت جلدی سے راضی بھی ہو جاتے ہیں, خوش بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر اپنی لڑائی اور جھگڑے کو بھول بھی جاتے ہیں. یہ ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. لیکن یہی بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ جب جوان ہو جاتے ہیں, یعنی جب ان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے, اب ان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ ان کے اندر اب جو جذبات اور خیالات ہوتے ہیں یہ دیر پا ہوتے ہیں. بچپن میں کیا ہوتا ہے, ان کے پاس زیادہ میموری نہیں ہوتی, وہ بھی صحیح بھول بھی جاتے ہیں اور اگنور بھی کر دیتے ہیں. چھوٹے بچے سے پوچھے, اچھا بتاؤ کہ آپ کی لڑائی کتنی دفعہ ہوئی اپنے بھائی کے ساتھ؟ مجھے کیا پتا, کیا تم اسے لڑتے ہو؟ تو آگے سے جواب کیا ملے گا؟ نہیں نہیں, میں تو نہیں لڑتا, ابھی بھی نہیں لڑتا. ایسے کہتے ہیں نا بچے, ان کو یاد نہیں رہتا. لیکن اگر یہی لڑائی کسی جوان یعنی بہن بھائیوں کے درمیان میں ہو جائے, اب کیا ہوگا؟ اگر آپ سے پوچھیں, اچھا تمہاری بہن نے فلاں موقع پہ پچھلے 2 سال پہلے اس شادی میں یہ بات کہی, پوری طرح یاد ہے, میرے دل میں چپی ہوئی آج تک نکلی نہیں ہے, یہ بات دماغ میں اٹکی ہوئی ہے اور دل میں درد محسوس ہو رہا ہے. اب دیکھو اس بات کا اثر کتنا زیادہ ہوا. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ اب کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہوں گی. بچے کے معاملے ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے, فٹافٹ ریزالو. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہوتی ہے بڑوں میں, چھوٹے بچوں کی لڑائی ہوگی تو وہ فوراً ہی بتا دیں گے کہ میں تو باجی کو لائک نہیں کرتا, حتیٰ کہ مما کو بھی کہہ دیں گے, مما آئی ڈونٹ لائک یو, ابو سے میں تو بس آپ سے بھول گیا, کر کے ہٹ جائیں گے. عجیب بات ہے کہ وہ اپنا اظہار فوراً کر دیتے ہیں. اگر یہی معاملہ بڑوں میں ہوگا تو بڑے کیا کریں گے, محسوس تو کر جائیں گے لیکن پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے, کہیں گے جی وہ 6 مہینے بعد پتہ چلا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی مجھ سے ناراض, ہم تو ملتے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اکٹھے کام بھی کرتے ہوں, لیکن پتہ ہی نہیں چلنے دیا. دل میں ناراضگی لیے لیے پھرتے ہیں اور 6 مہینے سال بھی گزارتے ہیں. تو بچپن میں اور بات تھی اور جوانی میں اب اور بات ہو گئی. تو یہ ایک ڈفرنس ہے. تو بڑوں کو اپنی خوشی اور اپنی غمی کو چھپانے کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جو بڑے ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی جو برائیاں ہیں نا وہ تو پتہ چلتی ہے, اپنی برائی نہیں پتہ چلتی, اپنی بات جو ہے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا. چھوٹے بچے سے آپ کہہ دیں ذرا سا نہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے, وہ کہے گا جی سوری سوری سوری, اس کو اپنی غلطی فٹافٹ پتہ چل جاتی ہے. بڑے کو کہیں نا ذرا آپ کہ تم نے غلطی کی ہے, آگے سے وہ لسٹ بہانوں کی دے گا, نہیں نہیں آپ بات نہیں سمجھے, آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آتی. پتہ کہتا ہے بھائی کیوں نہیں سمجھ آ رہی, ہمارے اندر عقل نہیں ہے, آگے سے گھماتے رہیں گے اور بہانے بناتے رہیں گے. تو یہ کیا ہے کہ اپنی اچھائیاں ان کو یاد ہوتی ہیں اور دوسروں کی برائیاں ان کو یاد ہوتی ہیں. اب ایک اور بھی فرق ہوتا ہے, وہ فرق کیا ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان بیچاروں کی تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی, عقل ہی نہیں ہوتی, وہ بیچارے بس ان کی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، خواہشات کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اگر نہیں ملی تو وہ لڑنے لگ جائیں گے. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان میں تو سوچ کا مزہ بھی جوان ہو چکا ہوتا ہے. اب اگر ان کو کوئی بات بری لگ رہی تو یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں اس کو ایسے موڑ پہ جا کے پکڑوں گا، ایسی جگہ پہ سزا دوں گا، ایسے کروں گا. اب یہ اپنی کیفیت کو چھپائے بھی رکھے گا اور انتظار میں ہوگا، داؤ میں ہوگا، اور اپنی سوچ کو یہ بلڈ کر رہا ہوگا، پلاننگ کرے گا. تو یہ ایک اور بھی بڑی بات ہے. اچھا اب ان کو یوں سمجھے کوئی معاملہ ہوا تو ان کو کیا مل گیا؟ فوڈ فار تھاٹ مل گیا. یہ فوڈ ہوتا ہے بندے کو، بعض لوگوں کو یہ فوڈ چاہیے ہوتا ہے، وہ نا ایمٹی مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، لیٹس ڈو سم تھنگ. لکنگ آلویز سرچ کرتے ہیں کہ کوئی چیز پتہ چلے اور ہم پھر جو ہے اپنا کام شروع کریں، اور پھر وہ دماغ کام کرتا ہے. اور بلا آخر کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے دیکھا آم گھر بنانے کے لیے تو بیسمنٹ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی برک وال ہوتی ہیں اور فلاں اور فلاں، اور یہ خیالی عمارت بنانے کے لیے تو سیکنڈ لگتا ہے. ساری عمارت دماغ میں بنائی ہوتی ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور پر سے پرندہ بنانا یا کوئی تھاٹ مل جائے تو پوری سٹوری ڈیزائن کر دینا، اب یہ اس کے لیے عقل چاہیے. اور یہ عقل جو ہے بندوں کے پاس کب ہوتی ہے؟ جب وہ فل میچیور ہو جاتے ہیں. بچوں کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گھروں کے اندر یا یوں سمجھے کہیں پر بھی جو بھی ہمارے آج معاشرے کے مسائل ہیں، گھر تو ایک یونٹ ہے. گھر سے کیا بنتا ہے؟ ٹاؤن بنتا ہے. ٹاؤن سے شہر بنا، شہر سے ملک بنے، اور ملکوں میں چلتے چلتے پوری دنیا. تو سارا یہ جو مسئلے مسائل ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف مزاجوں کے لوگ، یہ تمام جو کچھ بھی ہے، اس کو اب میں ایک فارمولے کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ٹربل کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے. اس میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے اس کا نام ہے بدگمانی. بندے کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بات ایسی اس نے اپنی طرف سے سوچ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یاکم وظن فان الظن وان الظن ظنک ذب. اکذب الحدیث، کہ تم گمان سے بچو، کیونکہ اکثر گمان کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں. یہ گمان کیا چیز ہے؟ گمان کہتے ہیں کہ بھئی بندے کو ذہن میں کوئی خیال آ گیا، خیال آ گیا کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے نا، میں دیکھا کہ بھئی یہ کچھ اداس اداس تھا، یا فلاں ایسے انداز سے بات کر رہا تھا، ہو سکتا ہے اس بیچارے کی طبیعت خراب ہو یا کوئی ایسی بات ہو. آپ نے ٹیلی فون پہ بات کی، آپ کو کیا پتا کہ وہ اس کے بعد کیا معاملے ہیں، وہ کس حال میں ہے. آپ نے صرف ساؤنڈ کے ساتھ ایک گیس ورک کیا کہ بھائی یہ مجھے اوائڈ کر رہا ہے، فنا ہو رہا ہے. بس یہ گمان آیا، آگے سے آپ نے بلڈ کرنا شروع کر دیا. اچھا اب یہ جو ہے فنا، اب یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، کرتے کرتے پوری اسٹوری اس میں بنا دی. اس بدگمانی کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے. شیطان کیونکہ ہمارا دشمن ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ جو بدگمانیاں اور یہ جو اس قسم کی کیفیت ہے، اسی کا نام وسوسہ ہوتا ہے. یہ انسان کے دل میں ایسے وسوسے آ جاتے ہیں، خیالات آتے ہیں. شیطان اور کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ ایسے آئیڈیاز کو بار بار ڈالتا رہتا ہے. اچھا بھائی اب یہ ہوا، یہ ہوا، آپ کی مرضی ہے آپ وہ آئیڈیا بائی کر لیں یا آپ ریجیکٹ کر دیں, بہت آسان سی بات ہے. اگر آپ نے آئیڈیا بائی کر لیا تو بس پھر کام شروع ہو گیا. اب شیطان نے آئیڈیا ڈالا اور اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے جو ہمارا ایک اور دشمن ہے, وہ ہمارا نفس ہے. اب نفس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. نفس میں جو ہے مثلا ایک بندہ ہے, اس کا نفس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا روح ہونا چاہیے گھر میں, میں مرد ہوں. اچھا اب وہ بیوی پہ روح جمانا چاہتا ہے, اپنے آرڈر چلانا چاہتا ہے, بچوں کے اوپر ہے اس کی کیفیت. تو اب اس کو غصہ آیا, اس نے بیوی کو دو چار سنا دی, بچہ پاس سے گزرا ہو بےچارا معصوم, اس کو ایک ٹکاڑ دیا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو یہ وجہ کیا بن رہی ہے؟ بدگمانی اس کی کاز بن رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے اب نفس جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے اس کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے سے ہی بیٹھا ہے. اور اس کے اندر پہلے یوں سمجھے نفس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ماچس کی ڈبی ہوتی ہے. آپ اس کے قریب آگ لے جائیں تو کیا ہوگا, پھٹے گا نا وہ. یا ایک گیلی ہوتی ہے ماچس کی, اس کو رگڑ دے ذرا سا, تو نفس کیا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اس میں آگ بھڑکتی ہے اور وہ اس نے لگا دی پورے گھر کو آگ. صرف ایک رگڑ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو, تو وہ رگڑ نہیں لگنے دینی چاہیے. یہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں, خیال ہوتا ہے بس. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور بے شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد, کوئی فائدہ نہیں دیتا. خیالات ہیں آپ کے اپنے, آپ نے سوچا ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا, حدیث مبارک کا الفاظ ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا, کہ ان کے بارے میں خیر کا ظن رکھتے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں بٹھا لیں, فارمولا ہے کہ ایک عام بندوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ آپ نے اچھی سوچ رکھنی ہے, لیکن جہاں کہیں متقی بندہ مل جائے, نیک بندہ مل جائے, اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس کے بارے میں آپ کا ظن جو ہے, آپ کا خیال جو ہے, آپ کی جو تھاٹس ہیں ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ کہیں گے بھائی کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, اصل میں یہ بندے کو کیا کرتے ہیں, اللہ سے ملاتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم الحمدللہ اس مسجد میں آئے ہیں, اللہ کا گھر ہے, ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں, ہمیں تو نصیحت کرنے والا کون ہوگا؟ تو بندہ ہی ہوگا نا جو ہمیں بتائے گا, سمجھائے گا, ہے نا. تو اگر ہم یہ سمجھنے بیٹھ جائیں کہ جی بیان میں مجھے ہی ٹوکا گیا ہے, میرے بارے میں ہی بات کی گئی ہے, تو آپ بتاؤ کہ بیان کرنے والا کبھی بیان کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے؟ ہم نے اپنے شہر کے بارے میں ایک عجیب چیز دیکھی. ہم نے اپنے شہر کے بارے میں یہ دیکھا کہ اگر ہزاروں کا مجمع ہو اور ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے بیان کروا رہے ہوں, تو آپ ہزاروں میں سے جتنے مرضی لوگوں سے پوچھ لیں کہ بتاؤ یہ بیان کس کے بارے میں ہو رہا تھا, کہنے والا کہے گا میرے بارے میں ہو رہا, ایک ہی جواب ہے میرے بارے میں. بھائی بات سنو, کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے. کس کی خبر بتا رہا ہے؟ اس پروردگار کی خبر بتا رہا ہے. اس میں اس بندے کی بھی سمارٹنیس نہیں ہے, وہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے, قرآن حدیث پڑھے جا رہا ہے. اور قرآن اور حدیث اتنی جامع کلام ہے, اتنی زبردست کلام ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا, تو صاف ظاہر ہے ہزاروں چھوڑو لاکھوں کا مجمع رکھ دو, جب قرآن اور حدیث پڑھا جائے گا ہر ایک پہ فٹ آ جائے گا. کتنی یہ ایک ہمارے سچے دین کی بات ہے کہ بھائی اس میں یہ اتنی پیاری باتیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس حدیث سے ایک نتیجہ نکالا اور فرمایا کہ اگر کسی بندے میں 69 باتیں ایسی ہوں کہ جن پہ عیب کا شک ہو اور ایک بات ایسی ہو کہ جو خیر کی طرف جاتی ہو, تو ہمیں اپنی ہیبٹ کیا بنانی چاہیے کہ ہم اس ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیکی کا گمان کریں. ہم کیا کریں, نیکی کی بات سوچنا شروع کر دیں. یعنی اس بندے میں خیر بھی, ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے خیر بھی بنائی ہے, شر بھی بنایا ہوا ہے. ہر بندے میں خیر بھی بنایا ہوا ہے, شر بھی بنایا ہوا ہے. احسن تقویم اللہ نے ہر بندے کو پیدا کیا ہوا ہے. آپ گناہگار سے گناہگار بندے کو دیکھیں گے نا, آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی اچھی بات نظر آ جائے گی. آپ حیران ہوگا, آپ کہیں گے یار یہ دیکھو بنا بندہ ایسا برا ہے, ایسا برا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو ایک خوبصورت بات ہوگی. اگر آپ اس خوبصورت بات کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا, آپ الحمدللہ یوں سمجھے کانٹوں میں پھول چنتے رہیں گے, آپ کی ٹوکری پھولوں سے بھرتی رہے گی. اب دیکھو نا, کہنے والا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جی پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں, اور کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں. جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہے, جہاں شر ہے وہاں خیر بھی ہے. تو کرنا کیا ہوتا ہے, نظر رکھنی ہوتی ہے ہم نے خیر پر اور شر کو جو ہے اگنور کرنا ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اگر بندہ ایک اپنا مزاج بنا لے, ہیبٹ بنا لے کہ اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ بھائی یہ اس میں فنا رکس ہے, فنا رکس ہے, فنا رکس ہے, اور وہ اگنور کرنا شروع کر دے, اس کو چھوڑنا شروع کر دے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, بالآخر اس بندے سے محبت ہو جائے گی اور اس بندے کو آپ سے محبت ہو جائے گی. اور اگر اس بات کو یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سارے عیبوں کو جانتے ہیں, سارے عیبوں کو جانتے ہیں نا, لیکن آپ اندازہ کرو کہ آخر اسی شہر کے کچھ بندے جنت میں بھی تو جائیں گے نا, یا انہیں میں کوئی عیب نہیں ہوگا جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے عیبوں کو اگنور کر دیا ہوگا. اسی کا نام ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیں گے کہ ہاں ہم جو پتہ ہے سارا کچھ, اور ہم اپنے دل میں کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے. کوئی بندہ نہیں چاہتا میرے گناہ ظاہر ہو جائے. ہر بندہ اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے, لیکن دعائیں کیا مانگتا ہے, یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا, اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا. تو اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا کہ تم دوسروں کے گناہوں پہ پردے ڈال دینا. اس پریکٹس کو ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے. دیکھو نا ایک اور چیز ہے, قیامت کے دن انسان پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ فلاں کے بارے میں تم نے بدگمانی کیوں کی, اب ہمیں ثبوت پیش کرو آپ نے بدگمانی کی ہے نا, فلاں بندے کے بارے میں آپ نے سوچا ہے فلاں یہ ہو سکتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اچھا تم نے بدگمانی کی ہی, آج ہم حساب لے دیں, لاؤ دوا لاؤ, تو اگر ہمارے پر مقدمہ ہو گیا تو ہم دوا کہاں سے لائیں گے اپنی بدگمانی کے, ہم نے تو اسے سوچ دی ہے نا کہ یہ فلاں چیز ہو سکتی ہے, یہ کر رہے ہوں گے, یہ وہ کر رہے ہوں گے, یہ ہو سکتا ہے. تو اگر اس معاملے میں اگر ہم یوں سمجھیں کہ ہم اپنے خلاف خود کیا کر رہے ہیں, مقدمے قائم کر رہے ہیں, بچنا چاہیے نا اس بدگمانی سے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بندوں کو جو دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے سب سے پہلے جہنم میں بھیج رہے ہوں, اور وہ بندے جن کے بارے میں وہ خیال کرتا تھا کہ یہ بڑے تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں, وہ ابھی کھڑے ہوں اور یہ پہلے جو ہے جہنم میں جا رہا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اس کو کتنی ڈپریشن ہوگی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کیا گندے لوگ ہیں, فلاں ہیں, اور دیکھو کہ بھائی آج میں جہنم میں ان سے پہلے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہو جائے, اللہ ان کو معاف کر دے, وہ جنت میں چلے جائیں. تو بھائی ہمیں ہر وقت دوربین لگا کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. کئی لوگوں کے پاس دوربین بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس خوردبین بھی ہوتی ہے,
डबल उनमें फोकस करती है। दूर से बैठे को आजकल होते हैं कि जब हाँ वो उसके घर में हो रहा है कोई खबर आती या कोई पता चलता, और जो उनके साथ रह रहे होते हैं गरीब गरीब के लोगों के साथ उनमें भी हुड बीज उनको चेक कर रहे होते हैं, अच्छा ये जी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो ये बदमानी जो है भाई ये शैतान की तरफ से आती है, और इसका आसान सा फार्मूला हमें हमारे अल्लाह रसूल अल्लाह ने समझा दिया कि जब भी कोई रॉन्ग थॉट आपकी तरफ आए तो क्या करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस आपको खबर आई है फला बंदे के बारे में वो ऐसा ख्याल आया दिल में नहीं, तो आपने क्या किया इस ख्याल को झटक दिया। हमने अपनी वालदा साहब को देखा, यानी ऑब्वियसली अगर घर के मामले में सास बहू के मामले होते हैं फला होते हैं कोई आके ऑब्वियसली कह देता था कि भाई फला आपकी बहू की ये मिस्टेक है, तो वालदा साहब उसको डांट देती थी कि आपको किसे कहा कि आप ऐसे मानते हैं। यानी ऑब्वियसली हमने ये चीज नोट की कि झाड़ देती थी कि बाद में हमारी जरूरत ही खत्म होगी कि अगर हम अम्मी को जाके बता भी देंगे तो अम्मी जाके डांटना ही रहना चुप चुप कर परवाह नहीं था। और उसका नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इस आज इसकी वालदा का इंतकाल होने लगा मौत से पहले एक एक घर के फर्द को पैगाम भेजा या सामने बैठ के कह दिया कि भाई मैं तुझ पर 100% राजी हूं और जो है तुम भी मुझसे राजी होना। बस किस तरह का हत्ता के मेरे भाई के घर में वालदा थी, मुझे पैगाम दिया कि अपनी बीवी के पास जब जाना रात को क्योंकि शराब की उसको बता देना कि भाई अम्मी ने सलाम भेजा और आपको पैगाम भेजा है कि मैं तरफ से बड़ी खुश हूं बड़ी नाज़ हूं अल्लाह से राजी बंदो में इस तरह से राजी हो जाता है अल्लाह से राजी हो जाता है। और दूसरा फार्मूला यह है कि भाई अगर कोई ऐसा ख्याल आ रहा हो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाह की पनाह मांगो कि ऐसे वसवसे आ रहे हैं मेरे दिल में जमा हो रहे हैं तो मुझे क्या होगा, मेरा सत्यानाश ही होगा है? तो लिहाजा ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस शर का शिकार हूं। अब देखिए इब्ने अरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी शैतान से मुलाकात हो गई और शैतान ने मुझे कहा कि तुम बहुत बड़े आलिम हो तो आओ आज क्यों ना हम मुनाजरा करें। तो इन्होंने फरमाया कि तू शैतान है और मेरे पास तेरा हथियार है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुनाजरा तो छोड़ो मैं तुम्हें डंडा मारूंगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का और तुम भागते फिरोगे। तो भाई कभी भी ये है अगर बदगुमानियां आनी शुरू हो तो क्या करना होता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का डंडा मारना होता है और उसको भगा देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहु इलल वसवसा, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने शैतान के मामले को वसवसे की हद तक रखा। अल्लाह ताला ने शैतान को इतने अख्तियार दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता कि वो आपका हाथ पकड़े और बुरा करवा दे, वो नहीं कर सकता। ये हाथ पकड़ के बुरा कौन करवाता है, इंसान शैतान जा भी निकला होता है। देखो ना मिसाल के तौर पर आपके दिल में ख्याल आया भाई का कि यार भाई ने जो ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया बुरा नहीं किया और हम बहुत ज्यादा बैठे हुए थे ऊपर से बहन आ गई, भाई क्या बात है आज तो आप बहुत उदास लग रहे हैं। हाँ ये बस मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे फला जगह पर भाई ने ऐसे ऐसे कहा बस मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो ये तो भाई है ही ऐसा वैसा फला ये वो तो उसने जल्दी में तेल डाला
और बंदे को इस लेवल पे ले गया कि हाँ तुम उसको कॉल करो, बता दो उसको क्या समझता है वो अपने आप को, तो उसने उसको पुश किया और किस मकाम पे ले गया, उसको अल्फाज भी दिए और टेलीफोन डायल करके भी आजकल सर फोन आ रही करते हैं उड़ीवाल के खड़ाई अरे भाई बात आ रही है या अगर छोटे छोटे मैं आपको बात करवा देती हूँ, आप तो बस डरते ही रहते हैं, और ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं आप तो बस डरते ही रहते हैं, मैं आपको मिलवा देती हूँ करके जनाब मिलवाएगी और जनाब वो कहेगी आज मजा है। ये शैतान से भी आगे नाम काम कर ये मामले जो है हमारे घरों में जो है आम हो रहे होते हैं। तो ये पहला मरला क्या है फसाद के अंदर और घरों के अंदर, चाहे शहरों में चाहे किसी भी जगह। तो पहला मरला क्या याद रखिए, ये पॉइंट याद करने वाले, पहली चीज क्या होगी कि बदगुमानी पैदा हो जाएगी। सबसे पहली चीज बदगुमानी पैदा होगी और उसके बाद अब दूसरा काम शुरू होगा, दूसरा मरला है। जो ही ख्याल आया दिल में तो अब क्या होगा, इंसान गिबत करनी शुरू कर देगा। जिसके बारे में ख्याल आ गया वो जी वो बस ऐसे ही है बस, अब वो चांस में रहेगा, चांस में जहां कहीं देखा कि यार ये भला बंदा जो ना मेरी बात सुनेगा उसके पास बैठेगा। आपको ही पता है वो तो बस ऐसे ही है, फलां चाहते हैं ये चाहते हैं, इनका तो मकसद ही यही है, ये तो ये है वो है। अच्छा अब इतना तबसरा करेंगे कि दूसरे को कन्विंस कर देंगे, उसको भी इस गुनाह में शिकार ना होंगे। अच्छा तो ये घरों में हो रहा है, आज हमारे घरों में सुकून क्यों नहीं है, इतने महंगे महंगे बेड खरीदे हुए हैं, एयर कंडीशन लगाए हुए हैं, हीटिंग के इंतजाम है, हर चीज मौजूद है, लेकिन हो क्या रहा होता है घरों के अंदर, मोहब्बत के रिश्ते हैं। अब तो बेटी और बाप का रिश्ता क्या है, मां का बेटी का रिश्ता क्या है, मियां और बीवी का रिश्ता जो खालिस तन बंदा मोहब्बत के नाम से ही डेवलप करता है। तो अब देखो अब क्या हुआ, बदगुमानियां और बदगुमानी से अगला बढ़ना क्या शुरू हुआ कि तबसरे, और इन तबसरों को आजकल जो है गिबत ही लोग नहीं समझते। अच्छे अच्छे नाम दिए हुए हैं, मैं आपकी मुखलिस हूं तो बताना चाहती हूं आप, और बहुत ही गिबत है। तो ये सारे शहर में गिबत चल रही होती है, हर तरफ बात चल रही होती है, और उसकी वजह से वो जो आग इंसान के अपने अंदर जल रही होती है वो आग कितने दिलों में जला देता है, बदगुमानी की आग हर तरफ भड़का रहा है। दो मरले हो गए याद रहेंगे ना, पहला मानना क्या था कि जब भी झगड़ा शुरू होता है फसाद, तो इंसान जो है शुरू करता है बदगुमानी से, इससे क्या नतीजा निकलता है, रेवत। हमें अपने घरों को बचाना है। तीसरा मानना यह होता है कि अगर दूसरे को पता चल गया कि मेरे बारे में भाई ये कह रहा है और वो ये चीज नहीं रहा था, बजाय इसके कि वो उसको प्यार मोहब्बत से कुछ समझा देता कि भाई आपको गलत फहमी हो गई है, वो भाई मैंने ऐसी बात नहीं की, आगे से क्या होगा नफ्स इसका भी खराब होगा, तो लिहाजा इसके दिल में गुस्सा बढ़ेगा और गुस्से की वजह से ये झगड़ा करेगा, तीसरे मरहले का ये शिकार। नतीजा क्या निकला, इन्हें कहा भी ठहर फिर मैं भी तुझे करके दिखाऊंगा अपने कमाना है। अगर जुबान से बोल सकेगा तो जुबान से बोलेगा, अगर फामद है तो बीवी के थप्पड़ लगाने से भी बाज नहीं आएगा है। अगर जो है इससे बढ़ के कुछ कर सकता होगा तो उसमें भी जाएगा। तो झगड़े की शक्ल ये गीबत अख्तियार करती है और जो है इंसान जो है अब जुबान से और हाथों से गोलाबारी बरसाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद चौथा मरहला आएगा फसाद का, वो क्या होगा, रिश्ते टूटेंगे। फर्ज किया उसने भी आगे से बुरा कह दिया तो ये कहेगा बस आज के बाद आपकी शक्ल नहीं देखनी, आपके साथ तो कलाम ही नहीं करना चाहिए, आपके साथ तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और घरों के अंदर इसको कता ताल्लुक जो होता है ये बोल चाल बंद कर देना, आना जाना खत्म कर देना, ये क्या कहलाता है? खता है रहमी, ये कहलाती है खता है रहमी। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, वयतऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, और काटते हैं रिश्तों को जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। देखो एक चीज समझिए, आप एक रिश्ता होता है यारी दोस्ती वाला, यारी दोस्ती का रिश्ता आप खुद डिवेलप करते हैं, ये आपकी नफ्स की वजह से होता है, ये रिश्ता आपका जिचाह मैं इससे भी दोस्त बनाता हूं, आपने उसको दोस्त बनाया, कुछ अर्सा आप उसके साथ दोस्ती रही, आप उस शहर से दूसरे शहर में चले गए, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो दोस्त भूल गया, नए दोस्त आपने बना लिए, पाकिस्तान में भी तो हमारे बचपन में दो दोस्त थे, हम यहाँ आ गए, आज शुरू शुरू में तो बहुत याद आते थे, कॉल भी कर लेते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो यारियां भूल। अच्छा लेकिन जो हमारे वहां पर कजन है, या अगर किसी का भाई वहां रहता है, बहन रहती है, आप 15-20 साल भी यहां रहते रहे, ये ताल्लुक नहीं टूटता, वो ताल्लुक जो है हमने बनाया था, और ये ताल्लुक अल्लाह ताला ने बनाया है, वो ताल्लुक हम जो हमने यारियों का बनाया हुआ है वो विद चॉइस है, और जो रिश्तेदारियों का ताल्लुक है ये विदाउट चॉइस है, क्योंकि अल्लाह ने इम्तिहान बनाया है, बहन बहन है भाई, अच्छा बोलती है तब भी वही बहन है, बुरा बोलती है तब भी वही बहन है, माँ माँ ही है, ये तो नहीं है कि भाई यार वो फलान की ये माँ बड़ी सोफिस्टिकेटेड है जब यार उसको अम्मी बना देते हैं, ऐसे कभी चीज नहीं है, ऐसे तो कभी नहीं है, उसके भी वही उसके भी होती है, अब उसका वही अबू होता है, इन्हीं माँ बाप को डील करना पड़ता है, गुड लक के अगर माँ बाप ऐसे मिल जाए जो आपको अंडरस्टैंड करने वाले हो, वरना आप कहते बोलने की जनरेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप है ना, अंग्रेजी बीमारी है ये, हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं होती, हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं होती, आप कहेंगे ये बात क्या है आप, नहीं इसीलिए कि अच्छा आप बताओ अगर जनरेशन गैप है तो माल पैसा तो बड़ा ट्रांसफर होता है, अगर माल ट्रांसफर करना हो पूरे पूरे हिसाब से अब्बा जान बहुत हुए सारे के सारे, आपके जनरेशन गैप है वो उनके जो संदूक है वो तो हमें चाहिए, पुरानी करेंसी है जो गोल्ड अम्मी का गोल्ड तो है पहनने वाला पुराना डिजाइन, छोड़ो छोड़ो ये कोई है कोई छोड़ो जनरेशन का है, फेंक देना उसको, नहीं 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 मैं तो इसको दोबारा पहनूंगी, अम्मी की निशानी है ना, अम्मी की निशानी पुराना डिजाइन ये तो बहुत अच्छा लगता है, पॉलिश करवाऊंगी इसको, फेंक देंगे अब उनका घर है सारी जिंदगी अब रहता रहे वहां पर, दरवाजे भी टूटे हुए हैं और उसका घर का हाल भी बुरा है, जनरेशन क्या है छोड़ो जी अब उनका घर क्या करना, हम वंडरफुल अपना घर लेंगे, नहीं बेटी वहां कोई जनरेशन क्या नहीं है, मार के लिए कोई जनरेशन क्या नहीं है, हाँ अब वो मुत्तकी था, परहेजगार था, दीनदार था, ये करेक्टर मेरे अंदर क्यों नहीं आए, मेरे बाप ने सारी जिंदगी मुझे हलाल खिलाया, कभी हराम का रुकबा मेरे मुंह में नहीं डाला, ये करेक्टर तो मेरे अंदर नहीं आया, क्यों नहीं आया, यहां जनरेशन गैप नहीं है, ये भी ये जनरेशन गैप का बहाना बनाकर क्या करते अपनी नफ्स परस्ती करते अपने शौक पालते, तो भाई कता रहमी जो है ये अगला नतीजा बनता है, तो हमें क्या करना चाहिए इससे पहले कि हम कतर रहमी तक पहुंचे, क्योंकि कतर रहमी का बताया गया कि भाई ये लैलतुल कदर की रात भी अगर किसी ने कतर रहमी की हो ना तो उसके गुनाह जो है ना यानी उसके जो गुनाह है वो माफ नहीं होते, यानी यूं समझिए कि अगर उसका अच्छा रहा अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किया जाए ना तो उसको साइड पर रख दिया जाता है कि ठीक है पढ़ा, जब तक कि ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों को नहीं जोड़ता अल्लाह ताला इसके गुड अमाल को कबूल नहीं करवाता, ये गुड अमाल करता फिर रहा है ठीक है हो रहे माशाल्लाह अल्लाह पोस्टपोन कर देते हैं, जैसे इसने अपने रिश्ते को पोस्टपोन किया हुआ है, अल्लाह ताला उसी तरह इसके गुड आमाल को भी पोस्टपोन कर देते। अभी मेरे सामने पेश ही ना, जब ये रिश्ता जोड़ लेगा हाँ फिर तुम लाना मैं सारा पैकेज कर। तो भाई अगर किसी ने कोई भी ऐसा ताल्लुक तोड़ा हुआ है तो उसको क्या चाहिए, फौरन जोड़ दे। अच्छा अब यहाँ एक बात भी समझिए, कलकत्ता रहने की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि एक सीरियस की बात है। इसकी डेफिनेशन यूँ समझिए कि अगर फर्ज किया एक बंदा है आपका भाई है, पाकिस्तान में रहता है, 10 साल हो गए आप तो उससे मिले नहीं है, क्या हम उस पर फतवा दे देंगे कि भाई इसने कलकत्ता रहने की हुई है? हम नहीं कह सकते। हालांकि हो सकता है कि आपकी बात उससे अच्छा, आपके कितने कजन हैं जिनसे शायद आप यहां आए और फिर कभी बात ही नहीं हुई, तो अब हम क्या कहेंगे, ये कतारहमी हो गई क्या? ये कतारहमी नहीं होती। कतारहमी एक नियत की बात है, इरादे की बात है। आपने जो ही दिन में इरादा कर लिया कि मैंने इसका मुंह नहीं देखना, इससे बात नहीं करनी है, वो बंदा आपके सामने आ गया या उसने फोन किया और आपको आपके कतार रहने का खतरा डाल दिया, समझ आ गई बात क्लियर है? कि अगर आपने उसको अवॉइड करने हैं इस अंदाज से कि मैं इससे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, नहीं मिलना चाहता, आपने एक अंदर क्या किया हुआ इरादा किया, ये इरादा का तरह भी इरादा है, चाहे आप रोज ही मिलते रहे, रोज मिलते रहे, आपने दिल में एक सोचा हुआ है कि भाई मैं इसके साथ बेताल्लुक हूं तो मैं इस वजह से जो है बात। हम एक और बात समझें कि घरों के अंदर आमतौर पर जो रंजिशें हो जाती हैं, ये मैंने आपको पहले क्या बताया, 4 मरहले बताए कि जो स्टेप्स बताए, स्टेप्स के बाद आपने कहाँ पहुंचे, पता रहे भी यानी कि घर ब्रेकडाउन हो गया। जैसे वो भाई ने स्टेप्स बताए थे कि वो दरवाज़ा टेढ़ा होने लगा है, फिर वो जो है क्लास होने लगे हैं और पता नहीं क्या क्या उसने बनाए, तो उसके बाद ऐड क्या है कि भाई ये घर अब टूटने वाला है, वो साइन है। तो अब मैंने उस तरह से मरहलों में बता दिया, अगर आपके दिल में बदगुमानियाँ आ रही हैं, गीबत शुरू हो चुकी है घरों से अंदर, है ना, तो इस किस्म के मामले शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या है कि ये आपके मामले खराब और इवेंचुअली रूफ नीचे गिर गए, तो ये क्या हुआ, खतर रहनी होगी, वहाँ से स्टेप चले और वहाँ तक पहुँचे। अब इसकी वजूहत समझे कि आमतौर पर वजह क्या बनती है कि जिस वजह से घर पर है ना उनके फसाद आ जाते हैं या कहीं पर भी फसाद आ जाते हैं, उसकी एक बात ये होती है कि हम जो है कंबाइंड रहते हैं, हम इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, ये सादा है, हमें रंजिश भी होगी, कभी कोई बात अच्छी लगेगी, कभी कोई बात बुरी लगेगी, ये कैसे बात है कि हर बात ही हर दफा अच्छी अच्छी लगे, बहन है हमेशा अच्छी बातें ही करनी है, मेरे फेवर में बातें करनी है, ऐसा तो नहीं है। तो हमेशा क्या होगा कि जब आप कंबाइंड घरों में रह रहे हैं, यानी एक तो है कि हम एज ए माशरा कंबाइन रह रहे हैं, दूसरी बात यह है कि हमने अगर घरों का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया, दो भाई इकट्ठे रहते हैं और जनाब हमने एक किचन भी शेयर करना है, तो जब दो बर्तन इकट्ठे होंगे तो टकराएंगे ना, तो आपके घर में झगड़े का चांस बढ़ गया, आपके घर में झगड़े का चांस बढ़ गया। अब इसमें क्या हो सकता है, आप अच्छे हों, बहुत डिसिप्लिन हो, भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन तुमने शादियाँ की, एक एक खानदान से लिया है, दूसरे दूसरे खानदान से लिया है, क्या इनके इनको भी मैच करके लिया था, ये तो ही घर में पैदा नहीं हुई थी, फिर आगे हर एक के 3-3, 4-4 बच्चे हो गए, वो भाई एक माँ बाप के बच्चे हैं उनमें डिफरेंसेज हैं, इंस्टेड के दो भाइयों की आगे औलाद है, अब इनके डिफरेंसेस कितने आएंगे। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई आप कंबाइंड रह रहे हैं, कंबाइंड रहते हुए बंदे की प्राइवेट लाइफ जो है वो एक्सपोज होती है। मिसाल के तौर पर खावद है, उसके जी चाह रहा था कि हमने आज अपनी वाइफ के लिए एक पूरी ले जाता हूँ,
अरे तेरा भूल लेकर घर आना चाहता है।
आप खुद ही सोचिए क्या बनेगा,
क्या ये कभी भूल आ सकते उस घर में? कभी भी नहीं आ सकते। इस घर के आंगन में कैसे फूल खिलेंगे? आइडिया तो बहुत अच्छा है कि भाई भाई इकट्ठे रहेंगे, लेकिन भाई कुछ प्राइवेट लाइफ भी होती है। शरीयत का हुक्म है कि भाई आपके अगर घर हैं तो आप कम से कम इतना उसको सेपरेट कर दें कि अगर रात को मियां बीवी उठना चाहें तो इतना खटका ना हो कि दूसरे भाई को बुला होती है क्या चाहिए उठे होंगे। समझदारों को इशारा कर दिया तो क्या होना चाहिए? इतनी प्राइवेसी दे दो कि भाई उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो एक्सपोज ना। सिंपल सा फॉर्मूला। तो अच्छा, एक ये है वजह बनी कि जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ के एक्सपोज हो जाने की वजह से घर में क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। अम्मी का कमरा साथ वाला है। अम्मी की उम्र कौन सी है? तुम्हारी उम्र कौन सी है? अगली बात आती है कि घरों के अंदर क्या होता है कि जितना ज्यादा बंदा क्लोज होता है, रिलेशन क्लोज होता है, उतने ज्यादा बंदे को उम्मीदें होती हैं। हल्की दोस्ती होगी तो हल्की उम्मीदें, ज्यादा दोस्ती होगी ज्यादा उम्मीदें, भाई भाई है, बहन बहन है तो फिर तो सुभान अल्लाह वो कहेंगे कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने गोश्त की आज कबाब ही खिला देते हैं, कमाल है। और अगर वो नहीं जाएगी अपने गोश्त के कबाब ही बना के खिला देगा कि बहन आज मैं अपने गोश्त के कबाब बना के रहे थे कि यार कोई टेस्टी नहीं है। आप अंदाजा करें जो मर्जी आप कर रहे हैं, बालों की तबक्वात क्या होती है? इतनी हाई होती है कि अल्लाह माफ करे कि उसको बंदा पूरा नहीं कर सकता जो मर्जी कर सकते। तो भाई अपनी तवक्कुआत को जो है एक हिसाब से रखना चाहिए। जबकि उम्मीदें इतनी बढ़ा लेते हैं तो ये उम्मीदें आखिर कभी ना कभी टूटती भी हैं। हर वक्त तो बंदा एक हर एक को नहीं हैप्पी कर सकता, कभी हैप्पी करेगा कभी नहीं भी करेगा, कभी बीवी को खुश करेगा कभी मम्मी को खुश करेगा। ये अभी कहे कि हर वक्त इसने मुझे ही खुश करना है, भाई इसकी शादी किस लिए करा दी थी आपने? खाम खा इस बेचारे को मुसीबत में डाल दिया, अपने पाए के साथ बांध देती है, सारी जिंदगी गुजार देता है जी, अपने बेड के वो जो होता ना पाँव होता ना उसके साथ बेड के साथ जीन लगाती बांध खड़ा रहता है सारा जिंदगी गुजारता। भाई की शादी की है अभी शेयर करेगा तो इतनी उम्मीदें ना लगाओ। अब तीसरी वजह क्या बनती है घरों के अंदर? वो क्या होता है कि वे ऑफ थिंकिंग में डिफरेंस होता है और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है। ये दो चीजें यानी कि सोच का फर्क होता है। दूसरे लफ्जों में क्या है कि एक आदमी जो है आपने देखा होगा, हम अपनी जिंदगी को देख लें, जब हम छोटे बच्चे थे हमारी सोच एक लेवल की थी, बड़े हुए और लेवल पर पहुंचे, उससे और बड़े हुए और लेवल पर पहुंचे। क्या घर में सारे एक ही उम्र में रहते हैं? क्या सबका एक्सपीरियंस लाइफ का एक ही जैसा है? किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा, किसी का काम, कोई औरत है कोई मर्द है। तो अब क्या होगा, इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इनका वे ऑफ थिंकिंग डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो आपको क्या करना है, एक मार्जिन रखना पड़ेगा अपने माइंड में कि एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा इतने परसेंट पे माइंड नहीं करना चाहिए। माँ अगर हर वक्त उम्मीद लगाए रखे कि बेटा ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बस ठीक है, फिर बेटा बेचारा वो कोशिश भी कर रहा है, वो कह भी रहा है कि अबू मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, खोले में अबू है समझ नहीं आती, अबू के दिमाग में अपना क्राइटेरिया है और बेटे के दिमाग में कि मैं क्या करूँ, मैंने जो है सब कुछ तो किया या खुश नहीं होते, तो ये एक ट्रबल है। अगली एक काज है और वो अजीब काज, वो क्या है कि हमने सुन्नत भरी जिंदगी को छोड़कर क्या किया हुआ,
रिवाज बनाए हैं, कहते थे हमारे घर का ये रिवाज है। अब रिवाज क्या होता है? ये हर बंदे ने रिवाज अपने मुताबिक डिजाइन किए होते हैं। साफ जाहिर है जो सुन्नत जिंदगी होगी वो तो अल्लाह अल्लाह के नबी की तरफ से गाइडलाइन होगी, और जो रिवाज होंगे वो बंदों के साथ होंगे। अब बंदों की जो रिवाज चाहे जितना अच्छा भी रिवाज हो, लेकिन मिसाल के तौर पे रिवाज है कि अम्मी या अबू के आगे झुक कर आकर पांव को हाथ लगाना है, बड़ा अच्छा रिवाज है माशाल्लाह। अब हर वक्त अम्मी को जब मिलेंगे क्या उसका पांव को छू सकते हैं नहीं छू सकते? हर सिचुएशन में हर दफा ये चीज करना मुमकिन नहीं है। आपने रिवाज बनाया है, ये हमारे तौर तवार ये है, हमारे रिवाज है, हम तो अपने खानदानी तरीके से रहते हैं, आप इस पे फख्र कर रहे हैं, हालांकि ये प्रैक्टिकली नहीं है। बंदे को तकलीफ परेशानियां कहीं कर सकेंगे कहीं कर सकेंगे। अगर इसके वही सुन्नत होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर माशरे में हर जुबान में हर हाल में उस पर अमल करना मुमकिन होगा। तो बजाय इसके कि हम जो है अपने रिवाज पे अमल करें, हमें चाहिए कि हम क्या करें, सुन्नत पर अमल करें। पांचवी एक और वजह होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं, वो क्या है कि बंदों को मामला करना नहीं आता। बस मिसाल के तौर पर आपने भाई से कहा यार वो मेरे दिमाग को जाना है, मेरी गाड़ी जो है खराब है, मैंने मैकेनिक को दी हुई है, यार ऐसे करो मुझे गाड़ी जो मैं आज मैंने तुम्हारे पास दो गाड़ी है, चलो एक गाड़ी बोले बदल कर आइए भाई, तेरा तो बात ही नहीं, जाओ गाड़ी तुम चले जाओ। अब आप गए और आप रास्ते में आपने चाय भी ले ली और चिप्स भी ले लिए और आपने जरा खाने पीने की चीज़ें आप जरा उसको खाते भी रहे, गंद मचाते रहे और सब कुछ कर करा के शाम को आप वापस आए, बड़ा बिजी डे था और आपने ला के भाई को गाड़ी पढ़ा, भाई जब गाड़ी दीजिए उसको फुल गैस थी, जब वापस आया तो वो हेड में स्विच बिछा गया। अब पता चला कि गाड़ी तो आ गई खैर खरीत से और भाई को जो है कोई अचानक कोई जरूरत पड़ गई, वो निकला इमरजेंसी में, उसको ख्याल ही नहीं आया यार गैस भी करवानी है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था मैंने तो फुल गैस की हुई है। तो अब वो बेचारा जा रहा है और वो रात का टाइम है और पता चला गाड़ी खड़ी हो गई। अब वो जनाब देख रहे हैं कि गाड़ी खराब हो गई, पता चले नहीं कि आप गैस खत्म हो गई, और क्या कहेंगे यार मेरा भाई है इसको इतनी तमीज ही नहीं है। जो देखो फिर उसको ख्याल आने लगे यार देखो ये तो कोई इधर चाय का बीज भी डाला हुआ है, उधर चिप फेंके हुए हैं, उधर पन्ना किया हुआ है, इसको ये किया हुआ है। अब देखो जरा क्या होगा, वो आपको फोन करेगा रात के आधी रात को, मैं खड़ा हो गया आई आपके मैं सो रहा था उसने देखो मुझे जगा दिया और आगे से बदतमीजी कर रहा है, क्या हो गया ऐसे क्या हो गया हमारा। अच्छा आप सुना रहे हैं उसको बातें और पता चलेगा कि भाई मेरे साथ तो ये वाकया हो गया और ये हो गया, तो आपने क्या किया मामला सही। अगर भाई भाई कारोबार इकट्ठे कर रहे हैं फिर तो आसमान पे चांस चला गया। आपने तो क्या हो गया क्या हो गया, मैंने मैंने अगर थोड़े से पैसे ले लिए तो भाई है ना मेरा क्या है। तो ये मामले जो है इनके अंदर ख्याल रखना पड़ेगा। एक मसला यहाँ और भी बता देते हैं, क्योंकि हम लोग फिरों का काम करते हैं और हम इस मामले को बहुत कॉमनली देखते हैं, वो क्या है कि जब फ्यूनरल हो जाता है ना और जायदाद के बांटने का टाइम आता है उस टाइम लोग मामला सही नहीं करते। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि फर्ज का खावन फौत हुआ और सारी जायदाद जो है बीवी के पास चली जाती है, आगे बच्चे होते हैं वो उनके साथ बैठ के वो शरी तकसीम नहीं करते। जब शरी तकसीम नहीं की मामला खराब किया ना उसने, इसका वबाल बैठ गया, इसकी मुसीबत उसके घर में आ गई। हालांकि अल्लाह ताला ने ये शरी तकसीम की हुई है और इसने ये शरी तकसीम ना की तो अब इसकी वजह से एक तो अल्लाह का मुजरम बना, दूसरा ये है कि अपने घर वालों का अच्छा अब औरत होती है वो क्या की है क्या हो गया, मैंने बच्चों पे तो खर्च करना है तो किस बात की तकसीम है। अब हम अमरीका में रहते हैं अक्सर जगहों पर लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमने शरी तकसीम कर दी है, वो सारा का सारा लेके वो बैठ जाते हैं और समझ लीजिए कि मैं खैर खाई कर रहा हूं। मामले को ठीक करो, ये अल्लाह के हाथ इतना बड़ा मामला है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तमाम हुकूक को तकसीम कर दिया। अच्छा, आमतौर पर अक्सर क्या होता है, दूसरे को जरूरत भी नहीं होती। मिसाल के तौर पर वो भी ठीक है, पैसे वाला है, उसको जरूरत ही नहीं है। आप एक टेबल पे बैठे, सारा हिसाब किताब उठाए, सबसे पहला काम ये करें कि बैठ के सारी गिनती करें कि जनाब ये गिनती हो। होने के बाद अब आप चाहें तो ले लें, नहीं चाहें तो अपने हक में जाए, जिसको मर्जी बांट दो, जैसे मर्जी बांट दो, बात खत्म। आप चांस ही नहीं देते। जब आपने चांस ही नहीं दिया, मामला खराब कर दिया। अब क्या हुआ कि आप अल्लाह के यहाँ भी मुजरम बन गए, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जनाब आपने उस मामले को भी खराब कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अजाब है। और अच्छा, अब इसके बाद बस बात करके खत्म करता हूँ कि घरेलू मामलों के अंदर या दोस्तों के मामलों में सबसे आसान तरीन चीज़ है, जब भी कोई जरा सी भी बात ऐसी हो जाए तो आसान सी बात है, उसके पास जाते होते हैं, उसको कहते हैं भाई आपका जो भी कोई हक मेरे पर बनता है हम ये मांग। अगर तो बात बहुत क्लियर है कि फलाह चीज़ आपने की है, तो सीधा सीधा कह दें कि जनाब मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। और सिंपल माफ़ी मांगने से मामला वहीं ख़त्म हो जाता है, आगे शैतान को मौका ही नहीं मिलता। एक मिसाल देकर मैं बात को समेटता हूँ, ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत चल रही है, और बातचीत करते हुए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बात कहना अच्छी नहीं लगी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की बात अच्छी नहीं लगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से खामोश हो जाते हैं और चुपके उठ के चले जाते हैं। दिल में एक दुख हुआ कि आपने ऐसी बात कह दी, देखो कौन लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े साहबा हैं। हजरत उमर अल्लाह को बाद में ख्याल आता है कि हजरत बिलाल को मेरी बात जो ना थोड़ी सी जो है चुभी है, उनके घर तशरीफ ले जाते हैं और कहते हैं सैयद बिलाल को कि मेरा ख्याल है कि आपको भाई कोई बात मेरी बुरी लगी है, मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत बिलाल अल्लाह खामोश भी है और खामोशी के साथ कह रहे हैं हाँ जी जी माफ़ कर दीजिए, ठीक है बस बस ठीक है, बिल्कुल बात नहीं, जैसे अक्सर हम लोग करते हैं ना, नहीं बस ठीक है ठीक है, बिल्कुल बात नहीं है, कमाल है। अच्छा, अब अमीरुल मोमिनीन की शिदाय हज़रत उमर अल्लाह पहचान गए कि इन्होंने दिल से मुझे क्लियर नहीं किया। हज़रत उमर वहीं लेट जाते हैं और बिलाल से कहते हैं कि आप अपना पाँव मेरे सीने पर रख दे और खुदा के लिए मुझे माफ कर। हज़रत बिलाल की आंखों से आंसू निकलते हैं और कहते हैं मेरे भाई आप अमीरुल मोमिनीन, आप क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब ये दोनों भाई एक दूसरे को सीने से लगाते हैं और रंजिश खत्म करते हैं। देखो हम कहते हैं हमने सॉरी तो की है ना, सॉरी तो कर दी ना, वो क्या है हमारे सिर पे सवाल हो गया। और देखो इनके मामले देखो कैसे सॉरी कर रहे हैं, कैसे वक्त का अमीर मोमिनीन, इतनी बड़ी संतरत, हम कौन है, क्या हमारी हैसियत है। वो जाते हैं और किसको कह रहे हैं, क्या उनको वो सदाएं अहद अहद की भूल गई कि बिलाल कौन है, गुलाम थे हमारे, लोग इनको कैसे ट्रीट करते थे। आज चंद सालों का फर्क है लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और आपकी जो है सुबत के असरात देखो कि क्या आलीशान है और किस तरीके से अमीरुल मोमिनीन। और उधर से आप देखो हज़रत उमर अल्लाह वो किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं उस वक्त, जबकि हज़रत बिलाल हबशी जो है वो गुलाम थे, उस वक्त उनके पास इतनी ताकत नहीं थी, अब खुद इतनी ताकत है। इस ताकत के बावजूद क्या कर रहे हैं, जमीन पर लेट जाते हैं और कहते हैं भाई अपना पाँव सीधे तना दे, बस माफ कर। इस दुनिया में माफ़ी मांगना आसान है, आखिरत में माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सब के घरों को आबाद करे।